Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Hamare sath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain aarthik mamlon ke varishth vishleshak Kumar Bijoy. Swagat hai aapka karyakram mein.
Thank you. Warm welcome Bijoy.
Thank you.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस एंड इन नेगेटिव टेरिटरी. सेंसेक्स शेड्स 236 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस बिलो 24,550. इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5.48% इन नवंबर दिस ईयर. India's industrial production records growth of 3.5% in October this year. And Union Minister H.D. Kumaraswamy launches taxonomy of green steel in New Delhi today.
घरेलू शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली. सेंसेक्स 236 अंक नीचे आया. निफ्टी 24,550 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद. देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर नवंबर में इस वर्ष घटकर 5.48% पर आई और देश का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर में इस वर्ष 3.5% दर्ज हुआ. और केंद्रीय मंत्री एसटी कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में ग्रीन स्टॉल की टैक्सोनॉमी लॉन्च की. घरेलू शेयर बाजार में आज मजबूत शुरुआत के बाद बिकवाली का दौर ही लगातार देखने को मिला. हालांकि थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी बाजार में था लेकिन कुल मिलाकर बिकवाली ही तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.25% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 236 अंक यानी 0.29% कम होकर 81,290 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 93 अंक नुकसान के साथ 24,549 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो वहां भी मुनाफा वसूली ही दिखी और छोटी और मझोली कंपनियों को अपेक्षाकृत सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की गिरावट आई. स्मॉल कैप इंडेक्स 1% के आसपास लुढ़क गया.
Benchmark domestic equity indices today ended with losses. The 30 share BSE Sensex shed 236 points or 0.29% to close at 81,290, and the NSE Nifty 50 dropped 93 points or 0.38% to end at 24,549. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also logged losses. The mid-cap index fell over 0.5% and the small-cap index slumped 1%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies ended with losses. In the top laggards, NTPC tanked over 2.7%, Hindustan Unilever fell over 2.4%, and Tata Motors dropped over 1.5%. Conversely, among the top gainers, Tech Mahindra jumped over 1.6%, Bharti Airtel climbed over 1.5%, and IndusInd Bank advanced 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, FMCG dipped over 1.1%, energy shed 1%, and industrials lost over 0.8%. Conversely, among the top gainers, focused IT gained over 0.8%, tech rose more than 0.7%, and information technology added over 0.5%.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज थोड़ा सा कमजोर होकर 84.86 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 106.58 पर चल रहा था। विजय, सबसे पहले हम बाजार में आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। पिछले कुछ सत्रों में हमने लिवाली देखी, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, किन अर्थों में ले रहे कारोबार को?
ये सामान्य मार्केट का जो रिएक्शन होता है वही है
जी।
इसमें ज्यादा मतलब किसी तरह के कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जिस फैक्टर के कारण मार्केट को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है
जी।
ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहते हैं वही है, क्योंकि मार्केट कुछ समय तक पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव टेरिटरी में, तो एक रेंज बाउंड मार्केट जो बिहेव कर रहा है। और आने वाले टाइम में भी मार्केट जब तक कि कोई बहुत न्यूज फैक्टर या कोई वैसा कोई बड़ा फैक्टर ना बूस्ट करे, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, जो कि अभी उम्मीद कम है, दिसंबर है, तो इसलिए मार्केट इसी तरह से रेंज बाउंड मूव करेगा।
सो विजय, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द आईटी स्टॉक्स व्हिच सर्ज्ड टुडे। दे आउट परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट एज वेल, विद द निफ्टी आईटी इंडेक्स hitting a new high of 46,000, and Tech Mahindra and Coforge were the ones which surged up to 4%. Several other IT stocks also reached their 52-week high. So how do you foresee IT as a sector in the coming weeks?
IT has got a positive mindset in the sense that a lot of external demand is expected, especially from the US market in the coming period. And even rupees is little weakening. So your continuous weakening of rupees is another factor which is giving a little support to the IT sector, which is more on a, you know, export-based revenue generation is there. So these are the certain aspects, better demand. Currency, you know, domestic currency's depreciation, as well as, you know, positive trend which is expected from the global market, especially from the US market, is the main driving force right now to the tech one.
Okay, the impressive rally today comes on the back of a recently released US inflation data.
Yes.
Which has, in fact, bolstered the investor confidence and heightened expectations of an must interest rate cut.
Yes,
I think it
is there.
Kind of guaranteed now that they will be.
There is a, you know, a very high chances, high probability,
yes,
which is there, and experts are expecting even up to 98% of the chances that yes, there will be a rate cut, and that rate cut will be well before full-fledged joining of the office by Trump government. So before anything goes in a different tone and tenor, they want to set the market with some rate cut, and which is more likely in this month itself, in few days more.
So just want to also ask you about the mid cap index, which fell over 0.5%, and the small cap slumped by 1%. What are the reasons behind that?
That's again, you can say that until unless there is a very good demand now, more or less you can say festive seasons, what had been there, those kind of things are more or less getting settled down. And in Indian environment, it is more driven, small cap is more driven from the Indian domestic demands, and we are not expecting anything big great during this coming you can say even a month time. Now it is not expected in that way. Now Christmas is there in corner, but not too much of the purchasing takes place the way it had been there in the last. Second is that you are looking from the which height. There's a down is there. There is a second. It's a base effect is also a very important point, because recently you have seen they have gone a very good upliftment. Now certainly from that, if little bit down will be there, which is in true sense, it's not a down figure, it is not a lower figure is very much in the upper side, but it is viewed from the previous figure which was on a much higher. That is the main cause we are looking at down at, otherwise it is a very impressive one.
Vijay, yadi hum varsh 2024 ko dekhe to kai sare hichkule humne dekhe, kai utar dekhe, kai chadhav bhi dekhe, kul milakar yah varsh किन सेक्टरों के लिए याद किया जाएगा जिन्होंने इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया, और आने वाला जो समय है और जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें कौन सा सेक्टर उभरता हुआ नजर आ रहा है आपको?
अगर आप करेंट ईयर को देखेंगे तो करेंट ये 2024 में कुछ सेक्टर जैसे आप बैंकिंग वगैरह को देखेंगे, बैंकिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसी तरह से कई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले जो कैपेक्स वाले जो सेगमेंट हैं, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेगमेंट है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। FMCG वगैरह में भी मिला जुला ही रुख रहा। आने वाले टाइम में भी ये जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ओवरऑल की बात मैं कहूँगा, क्योंकि अभी भी जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी हैं और ट्रेडिशनल एनर्जी में अभी भी बहुत पोटेंशियल और दम बाकी है। अभी कम से कम 20-25 साल अभी इस सेक्टर में इतना भी कहीं नहीं, उसके ग्रोथ में कमी आएगी, उसमें कमी नहीं आएगी।
यहाँ आपने यानी ग्रोथ की बात की तो यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्टर है अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसे कैसा लेकर चल रहे हैं? हमने देखा शुरू में कि मांग अच्छी खासी निकलते दिख रही थी, फिर हमने थोड़ा ठहराव देखा विभिन्न कारणों से, अब क्या आसार हैं और आने वाले दिनों? जैसे आपने रिन्यूएबल की बात की तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी नई ऊर्जा की दिशा में बढ़ रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है, तो क्या रूपांतरण आप देख रहे हैं? साथ ही एक और उसके साथ पूरक सवाल में इकट्ठा पूछ ले रहा हूं कि जो नई कंपनियां छोटी कंपनियां आ रही हैं इनोवेटिव सेक्टर में, ग्रीन सेगमेंट में जा रही हैं, उनका कैसा प्रदर्शन रह सकता है?
अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर खास करके पैसेंजर कार सेक्टर जो है वो अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के तौर से गुजर रहा है। और जैसे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी जो सबसे ज़्यादा प्रमुख मुद्दा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि उसका बैटरी का क्या होगा, बैटरी कैसे उसका यूज होगा, मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके डिस्पोजल तक का एक इश्यू है। क्या किसी और तरह के ऊर्जा पे जैसे हाइड्रोजन से रिलेटेड हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उस पर शंका जाहिर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो आने वाला 2-3 साल 4 साल है, ये 4 साल एक एस्टैब्लिशमेंट का केस होगा, और वो एस्टैब्लिशमेंट में आप देखेंगे कि जब हाइड्रोजन वगैरह से रिलेटेड ऊर्जा का जब इस्तेमाल अच्छे से होने लगेगा तो शायद कुछ 2030-31-32 तक आके 35 तक आके एक अस्थायित्व आएगा और एक नई इंडस्ट्री का सही ढंग से आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल में बढ़ेगा। इसलिए अभी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल तैयार हो रहा है, इसके भविष्य में बहुत संशय नहीं है लेकिन बहुत उत्साह भी नहीं है।
यही मैं ध्यान आपको दिलाना चाहता था कि यानी बैटरी का निर्माण हम कहाँ से करेंगे, क्या हमारे यहाँ वो संसाधन है? जबकि हाइड्रोजन ऊर्जा लगभग 2 वर्ष पहले ही गडकरी जी ने चर्चा को उठाया था और कहा था कि इसमें बहुत अधिक पोटेंशियल है, तो प्रायोगिक स्तर से हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में हम कितना ऊपर उठे हैं?
हमारे बिग मैन्युफैक्चरर्स इस पर काफी काम कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से प्रॉमिस किया है कि वो 2030-31 होते होते ग्रीन हाइड्रोजन जितना चाहिए होगा वो उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे, और उसके लिए जो भी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं और आगे भी करने का वो वादा कर चुके हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा लेकिन 2-3 बड़े बड़े घराना हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बहुत ही ज्यादा उसके रिसर्च डेवलपमेंट में उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
मूविंग ऑन, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इज टू 5.48% इन नवंबर, डाउन फ्रॉम 6.2% इन द प्रीवियस मंथ ऑफ द करंट फिस्कल ईयर. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas stood at 5.95% compared to 4.83% in urban regions. The food inflation rate for November 2024, based on the All India Consumer Food Price Index, is provisionally reported at 9.04%, down from 10.9% recorded in October. Corresponding inflation rate for rural and urban areas stood at 9.1% and 8.7%. According to MOSPI, the ease in inflation in November 2024 is mainly due to decline in inflation of food and beverages group. The data added that the significant decline in inflation is observed in vegetables, pulses and products, sugar and confectionery, fruits, eggs, milk and products, spices, transport and communication, and personal care and effect subgroups. RBI's Monetary Policy Committee, MPC, last week had increased its inflation estimates to 4.8% from 4.5% for the same period, highlighting concerns over food inflation. The MPC has retained its neutral stance, signaling room for potential rate cuts if inflationary pressure eases in the coming months. I would like to ask you, Bijoy, that India's retail inflation has eased 5.48% overall, but rural area it stood at 5.95, and in the urban areas it is at 4.83. Reasons for that?
This is a great concern. Actually, reason-wise, it is because of basket, and your reason is already explained there, related to whatever the food inflation has been. Main concern is that inflation is not easing to a greater extent in the essential commodities. This is the great concern for India. And I think this is the challenge to a greater extent. Previous governor has kept on really controlling, and now new governor has got this challenge to maintain it, because some banking sector and other front, it has been more or less comfortable down, and NPA is, you know, really in a very best manner. But inflation has not come to that way. Overall, maybe impression could be giving it, now it is lesser than 6%, but that is not sufficient. And our inflation overall has to come to 4%, and even food inflation should not be more than 5%. So that is what the target is.
Yes, so all said and done, 5.48% means that we are within the aim of the RBI's inflation range of 2 to 6%.
This is only a statistical impression. I'm more looking into 9%. On the downside, and instead of a monetary dimensions, fiscal dimension has to take care of it in a proper way. Supply has to increase, because these are essential items. We can't blame the demand, that demand is more. People have the right to have a high, you know, good nutritious food. Vegetable, milk and pulses should be there in everyone's plate. That is what need is there.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। देश के औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अक्टूबर में इस वर्ष प्रमुख औद्योगिक उत्पादन में 3.5% की वृद्धि हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीना दूसरा लगातार महीना है जहां औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जबकि अगस्त में थोड़ी सी गिरावट हमने देखी है। आईआईपी के महत्वपूर्ण तीन भागीदार मैन्युफैक्चरिंग में 4.1% का उत्पादन अक्टूबर में हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रिक यानी बिजली उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई, और खनन गतिविधियों में 0.9% की वृद्धि हुई है, जबकि उपयोग के आधार पर अक्टूबर महीने में 2024 में अक्टूबर 2023 की तुलना में 2.6% की वृद्धि प्राथमिक वर्ग की वस्तुओं में हुआ। पूंजीगत सामान में 3.1% की वृद्धि हुई, और इंटरमीडिएट गुड्स में 3.7% की, जबकि बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्र में 4% की वृद्धि हुई है। 5.9% की वृद्धि उपभोक्ता सामग्रियों में हुई, और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर सामग्रियों में 2.7% की वृद्धि हुई। विजय, यानी हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि तेज गति से उत्पादन का चक्का चल पड़ा है इन आंकड़ों को देखते हुए?
कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन अभी भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। रिसर्च के थ्रू ये बात सामने आया है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में अगर वृद्धि जो होती है उसके अनुपात में फिर वो जीडीपी को एक बूस्ट करता है, तो जैसे 4% इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये 1% जीडीपी को अपने बलबूते पे ऊपर ले जाने की ताकत रखता है। तो यहाँ अभी जैसे आप कह रहे हैं कि 4% का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में वृद्धि हुआ है, तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो ऊपर जाएगा, और जब जीडीपी ऊपर जाता है तो कंजम्पशन भी फिर ऊपर जाता है और फिर अपनी एक साइकिल चल पड़ती है। तो जो आप कह रहे हैं यस, उम्मीद कर सकते हैं चक्का चल पड़ेगा।
Steel and Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy stressed that India's steel industry accounts for around 7% of global carbon dioxide emissions. To align with the country's net zero target by 2017 and build a more sustainable steel industry, the minister launched the taxonomy of green steel in New Delhi today. Addressing the gathering, the minister said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the steel industry is growing at a fast pace, contributing significantly to infrastructure, manufacturing and employment. He added that the release of green steel taxonomy highlights the country's collective mission of transitioning towards a low-carbon economy. The union minister further added that India's mission of green steel is a testament to the government of India's dedication to fostering sustainable industrial growth. Under the initiative, the government aims to promote the adoption of green missions, including hydrogen-based steel production, carbon capture, utilization and storage, and the use of renewable energy in steel production, among others. Bijoy, very briefly, what is green steel taxonomy? How does it define in the global context of sustainable development?
See, when steel sector is considered one of the contributors to the pollution, it's not that much considered environment friendly. So it is really required that how much emission is there, especially to carbon dioxide emission. So in carbon dioxide emission, there has been certain ratings globally. It has been accepted that if it is your 1.6 ton emission is there per ton of the finished steel good, then it is 5-star. If it is 1.6 to 2, it is 4-star, and if it is 2 to 2.2, it is 3-star rating is there. So this is the what rating has been set. India has fortunately really gone for less than 2.2. The average is still in India is 2.6, but it has gone below 2.2, which is a 3-star rating exercise is there. This is what one good part, you can say good initiative, effort has been too much, and we are expecting that we will be achieving even less than 1.6. That is a 5-star that has to go through. Certainly it is going to be.
Vijay, यहाँ पर बस बहुत संक्षेप में green steel का मतलब क्या हुआ? हमारे जो नए श्रोता आम श्रोता हैं वो क्या हुआ green steel?
देखिए green steel का मतलब हरा steel नहीं होता है।
जी जी, वही स्पष्ट करना था।
ये steel की ये जो बाहर का जो हरा environment है, जो हमारी हरियाली है, उस हरियाली को खत्म करने में वो सहयोग ना करे। तो अगर वो हरियाली बनी रहेगी तो अगर स्टील के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा
जी, जी,
तो वो ग्रीन स्टील कहला जाएगा।
श्रोताओं, उम्मीद है कि स्पष्ट रूप से समझ गए, हरा स्टील नहीं बनने जा रहा, बल्कि स्टील के उत्पादन में ऊर्जा की खपत में परिवर्तन का संकेतक है यह शब्द। आइए आगे बढ़ें। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2014 में 120 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2023 में बढ़कर 250 करोड़ हो गई। श्री शेखावत आज नई दिल्ली में पर्यटन क्षेत्र में पहल और विकास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
The number of registered enterprises on MSME Udyam portal has increased from 1.65 crores on 31st of March 2023 to 5.6 zero crores on 30th of November this year. Micro, Small and Medium Enterprises Minister Jitin Ram Manji said in a written reply in Lok Sabha that this shows an addition of 3.95 crore enterprises during the period.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या 31 मार्च 2023 को 1,65,00,000 से बढ़कर इस साल 30 नवंबर तक 5,60,00,000 इकाई पर पहुंच गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा में एक लिखित जानकारी में यह जानकारी दी कि 3,95,00,000 उद्यमों की वृद्धि हुई।
यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज हाईलाइटेड दैट इंडिया इज एमिंग फॉर अ बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड mutually beneficial free trade agreement with the European Union. During an interaction with ambassadors of the European Commission delegates, Mr. Goyal discussed the growing proximity and rising trade between India and the EU. He acknowledged the need for political directions to arrive at a commercially meaningful deal that respects the sensitivities of both the parties. The minister added that the Indian economy is expected to grow at 7-8% annually to become the third largest economy in the world over the next few years, projecting that India's GDP would reach $35 trillion by 2047. And that is an extremely good point, Bijoy. Third largest, $35 trillion, and India having a balanced and comprehensive, beneficial free trade agreement with the European Union.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज तेजी का रुख दिखा है. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.6% लाभ में रहा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की बढ़ोतरी हुई. जापान का निक्केई 225 1.2% ऊपर बंद हुआ. हांगकांग के हिंगसिंग में भी 1.2% की बढ़त हुई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.43% लाभ में रहा. यूरोपीय जोन की ओर चले तो प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख था. समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 100 0.1% ऊपर चल रहा था. फ्रांस के 40 में 0.04% की गिरावट थी. जर्मनी का डेक्स 0.04% की मामूली बढ़त में चल रहा था.
Bijoy, before I go on to the US market, your brief comment on the free trade agreement.
It's really required now. Until unless there is will be a free trade, we will not be able to really take the advantage of the global market. We want to explore the market, and for that it is essential we should have a favorable agreement between countries, and as well as, if it is possible, European Union at large. That will help us to achieve our good trade part as well as reducing our current account deficit, because on a trade front our deficit is really very high.
Two out of three major U.S. indices registered gains yesterday after the inflation data boosted Fed rate cut hopes. The Nasdaq composite surged over 1.7%, above the 20,000 level milestone for the first time, led by a rally in technology stocks, and the S&P 500 jumped over 0.8%. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average declined 0.22%. Bijoy, with the new Republican administration taking over, tariffs in the world will go higher. So from deglobalization, will we be looking at tariff wars coming forward? How will that change the global growth and the inflation and the growth dynamics?
I'm just waiting for 20th January. I'm looking at who are the invitee, who is going to witness those oath ceremony, and that will decide future course of action. Because a lot of contradictory statement has already appeared from the office of coming president, and that is indicating that we are not very sure what way it is going to be there. But certainly, tariff war is expected to happen.
Yeah,
it will be happening.
Oil prices displays mixed trend today. Brent crude was trading marginally up by 0.07% at $73.47 per barrel, while WTI crude slipped by 0.09% to trade at $70.35 per barrel, according to the latest reports.
आइए चलें आखिर में सर्राफा बाजार. सर्राफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.54% घटकर 78,670 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था. वहीं चांदी 0.75% घटकर 95,040 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.51% घटकर 78,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.66% घटकर 95,169 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहा था। और बस यही श्रोताओं की ओर से विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू विजय फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices end in negative territory, Sensex sheds 236 points, Nifty closes below 24,550. India's retail inflation eases to 5.48% in November. India's industrial production records growth of 3.5% in October this year. And Union Minister launches taxonomy of green steel in New Delhi today. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.